मैं निशान सिंह आपके सामने हिंदी पत्र द्वितीय का चंद्रगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। लेट अस मूव टू द चैप्टर मौर्य वंश। प्राचीन आर्य नृपतिगण का साम्राज्य उस समय नहीं रह गया था। चंद्र और सूर्यवंश की राजधानियां अयोध्या और हस्तिनापुर विकृत रूप में भारत के वक्षस्थल पर अपने साधारण अस्तित्व का परिचय दे रही थीं। अन्य प्रचंड बर्बर जातियां ही की लगातार चढ़ाइयों से पवित्र सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों के समागम का पवित्र स्वर मंद हो गया था। पांचालों की लीला भूमि तथा पंजाब मिश्रित जातियों से भर गया था। जाति समाज और धर्म सब में एक विचित्र मिश्रण और परिवर्तन सा हो रहा था। कहीं आभीर और कहीं ब्राह्मण राजा बन बैठे थे। यह सब भारत भूमि की भावी दुर्दशा की सूचना क्यों थी? इसका उत्तर केवल यही आपको मिलेगा कि धर्म संबंधी महापरिवर्तन होने वाला था। यह वह बुद्ध से प्रचारित होने वाले बौद्ध धर्म की ओर भारतीय आर्य लोगों का झुकाव था जिसके लिए ये लोग प्रस्तुत हो रहे थे। उस धर्म बीज को ग्रहण करने के लिए कपिल कनाद आदि ने आर्यों का हृदय पहले ही से उर्वर कर दिया था, किंतु यह मत सर्वसाधारण में अभी नहीं फैला था। वैदिक कर्मकांड की जटिलता से उपनिषद तथा सांख्य आदि शास्त्र आर्य लोगों को सरल और सुगम प्रतीत होने लगे थे। ऐसे ही समय पार्श्वनाथ ने एक जीव दयामय धर्म प्रचारित किया और वह धर्म बिना किसी शास्त्र विशेष के वेद तथा प्रमाण की उपेक्षा करते हुए फैलकर शीघ्रता के साथ सर्वसाधारण के से सम्मान पाने लगा। आर्यों की राजसूय और अश्वमेघ आदि शक्तियां बढ़ाने वाली क्रियाएं शून्य स्थान में ध्यान और चिंतन के रूप में परिवर्तित हो गई। अहिंसा का प्रचार हुआ। इससे भारत की उत्तरी सीमा में स्थित जातियों को भारत में आकर उपनिवेश स्थापित करने का उत्साह हुआ। दार्शनिक मत के प्रबल प्रचार से भारत में धर्म समाज और साम्राज्य सब में विचित्र और अनिवार्य परिवर्तन हो रहा था। बुद्ध देव के 2-3 शताब्दी पहले ही दार्शनिक मतों ने उन विशेष बंधनों को जो उस समय के आर्यों को उद्विग्न कर रहे थे तोड़ना आरंभ किया। उस समय ब्राह्मण वल्कलधारी होकर काननों में रहना ही अच्छा न समझते, वरन वे भी राज्य लोलुप्त होकर स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों के अधिकारी बन बैठे। क्षत्रियगण राजदंड को बहुत भारी तथा अस्त्र शस्त्र को हिंसक समझकर उसकी जगह चक्र हाथ में रखने लगे। वैश्य लोग भी व्यापार आदि में मनोयोग न देकर धर्माचार्य की पदवी को सरल समझने लगे। और तो क्या भारत के प्राचीन दास भी अन्य देशों से आई हुई जातियों के साथ मिलकर दस्युवृत्ति करने लगे। वैदिक धर्म पर क्रमशः बहुत से आघात हुए जिनसे वह जर्जर हो गया। कहा जाता है कि उस समय धर्म की रक्षा करने में तत्पर ब्राह्मणों ने अवूर्धगिरी पर एक महायज्ञ करना आरंभ किया और उस यज्ञ का प्रावधान उद्देश्य वनश्रिम धर्म तथा वेद की रक्षा करना था। चारों ओर से दल के दल क्षत्रियगण जिनका युद्ध ही आमोद था जुटने लगे और वे ब्राह्मण धर्म को मानकर अपने आचार्यों को पूर्ववत सम्मानित करने लगे। जिन जातियों को अपने कुल की क्रमागत वंश मर्यादा भूल गई थी वे तपस्वी और पवित्र ब्राह्मणों के यज्ञ से संस्कृत होकर 4 जातियों में विभाजित हुए। इनका नाम अग्निकुल हुआ। संभवतः इसी समय में तक्षक या नागवंशी भी क्षत्रिय की एक श्रेणी में गिने जाने लगे। यह धर्म क्रांति भारतवर्ष में उस समय हुई थी जब जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए जिनका समय ईसा से 800 वर्ष पूर्व माना जाता है। जैन लोगों के मत से भी इस समय में विशेष अंतर नहीं है। ईसा के 800 वर्ष पूर्व यह बड़ी घटना भारतवर्ष में हुई जिसने भारत में राजपूत जाति बनाने में बड़ी सहायता दी और समय समय पर उन्हीं राजपूत क्षत्रियों ने बड़े बड़े कार्य किए। उन राजपूतों की 4 जातियों में प्रमुख परमार जाति थी और जहाँ तक का इतिहास पता देता है उन लोगों ने भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैलकर नवीन जनपद और अक्षय कीर्ति उपार्जित की। धीरे धीरे भारत के श्रेष्ठ राजवनों राजगणों में उनकी गणना होने लगी। यद्यपि इस कुल की भिन्न भिन्न 35 शाखाएं थीं, पर सब में प्रधान और लोक वितुर्य मौर्य नाम की शाखा हुई। भारत का श्रृंखलाबद्ध इतिहास नहीं है, पर बौद्धों के बहुत से शासन संबंधी लेख और उसकी धर्म पुस्तकों में हमें बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि उस धर्म को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाला उसी मौर्य वंश का सम्राट अशोक हुआ है। बौद्धों के विवरण से ज्ञात होता है कि शशुनाग वंशी महानंद के शंकर पुत्र महापद्म के पुत्र धनानंद के मगध का सिंहासन लेने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ने नगर का राजकुमार था। वह मौर्यों का नगर पिपल्ली कानन था और पिपल्ली कानन के मौर्य नृपति लोग भी बुद्ध के शरीर भस्म के भाग लेने वालों में से एक थे। मौर्य लोगों को उस समय भारत की कोई दूसरी राजधानी न थी, यद्यपि इस बात का पता नहीं चलता कि इस वंश के आदि पुरुषों में से किसी ने पिपल्ली कानन के मौर्यों की पहली राजधानी स्थापित की। पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ईसा से 500 वर्ष या इससे पूर्व यह राजधानी स्थापित हुई और मौर्य जाति इतिहास प्रसिद्ध कोई ऐसा कार्य तब तक नहीं कर सकी जब तक प्रतापी चंद्रगुप्त उसमें न उत्पन्न हुआ हो। उसने मौर्य शब्द को, जो अब तक भारतवर्ष में एक कोने में पड़ा हुआ अपना जीवन अपरिचित रूप से बिता रहा था, केवल भारत ही नहीं वरन ग्रीस आदि समस्त देशों में परिचित करा दिया। ग्रीक इतिहास लेखकों ने अपनी भ्रमपूर्ण लेखनी से इस चंद्रगुप्त के बारे में कुछ तुच्छ बातें लिख दी हैं, जो कि बिल्कुल असंबंध ही नहीं वरन उल्टी हैं। जैसे चंद्रगुप्त 9 के पेट से पैदा हुआ महानंदीन का लड़का था, पर यह बात पोरस ने महापद्म और धनानंद आदि के लिए कही है, और वही पीछे से चंद्रगुप्त के लिए भ्रम से यूनानी ग्रंथकारों ने लिख दी। ग्रीक इतिहास लेखक प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मगध सिंहासन पर आरोहण करने के बाद कहता था कि सिकंदर महापद्म की को अवश्य जीत लेता, क्योंकि यह नीच जन्मा होने के कारण जन समाज में अपमानित तथा घृणित था। लिवानियस आदि लेखकों ने तो यहाँ तक भ्रम डाला है कि पोरस ही नापीत से पैदा हुआ था, पोरस ने ही यह बात कही थी, इससे वही नापीत पुत्र समझा जाने लगा। तो आश्चर्य है कि तक्षशिला में जब चंद्रगुप्त ने यह बात कही थी तो वह नापीत पुत्र समझा जाने लगा हो। ग्रीक के भ्रम से यह कलंक उससे लगाया गया है। एक बात और भी उस समय तक निर्धारित नहीं हुई थी कि सैंड्रोकोटस और जैंड्रामस भिन्न भिन्न दो व्यक्तियों का एक का ही नाम है। सैंड्रोकोटस और जैंड्रामस भिन्न भिन्न दो व्यक्तियों का या एक का ही नाम है। यह एच.एच. विल्सन के विष्णु पुराण आदि के संपादन समय में सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त में को एक में मिलाया। यूनानी लेखकों ने कहा है कि जैंड्रामस ने बहुत सेना लेकर सिकंदर से मुकाबला किया। उन्होंने उसे प्राच्य देश के राजा जैंड्रामस को, जो नंद था, भूल से चंद्रगुप्त समझ लिया, जो कि तक्षशिला में एक बार सिकंदर से मिला था और बिगड़ कर लौट आया था। चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट हुई थी, इसलिए भ्रम से वे लोग सैंड्रोकोटस और जैंड्रामस को एक समझकर नंद की कथा को चंद्रगुप्त के पीछे जोड़ने लगे। चंद्रगुप्त ने पिपली कानन के कोने से निकलकर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। मेगास्थनीज ने इस नगर का वर्णन किया है और फारस की राजधानी से बढ़कर बतलाया है। अस्तु मौर्यों की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र हुई। पुराणों को देखने से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के बाद 9 राजा उसके वंश में मगध के सिंहासन पर बैठे। उनमें अंतिम राजा बृहद्रथ हुआ, जिसे मारकर पुष्यमित्र, जो सुंग वंश का था, मगध के सिंहासन पर बैठा। किंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय में आया था, लिखता है, मगध का अंतिम अशोक वंशी पूर्णवर्मा हुआ, जिसके समय में शशांक गुप्त ने बोधिध्रुम को विनष्ट किया और उसी पूर्ववर्मा ने बहुत से गौ के दुग्ध से उस उन्मूलित बौद्धि धर्म को सींचा। जिससे वह शीघ्र फिर बढ़ गया। यह बात प्रायः सब मानते हैं कि मौर्य वंश के 9 राजाओं में ने मगध के राज्य आसन पर बैठकर उसे अधीन समस्त भूभाग पर शासन किया। जब मगध के सिंहासन पर से मौर्य वंशियों का अधिकार जाता रहा, तब उन लोगों ने एक प्रादेशिक राजधानी को अपनी राजधानी बनाया। प्रबल प्रतापी चंद्रगुप्त का राज्य 4 प्रादेशिक शासकों ने शासित होता था, अवंती, स्वर्णगिरी, तोसाली और तक्षशिला में अशोक के 4 सूबेदार रहा करते थे। इनमें अवंती के सूबेदार प्रायः राजवंश के होते थे। स्वयं अशोक उज्जैन का सूबेदार रह चुका था। संभव है कि मगध का शासन डवाडोल देखकर मगध के 8वें मौर्य नृपति शोम शर्मा के किसी भी राजकुमार ने, जो कि अवंती का प्रादेशिक शासक रहा हो, अवंती को प्रधान राजनगर बना लिया हो, क्योंकि उसकी एक पीढ़ी के बाद मगध के सिंहासन पर शुंग वंशियों का अधिकार हो गया। यह घटना संभवतः 175 ईसा पूर्व में हुई होगी, क्योंकि 183 में शोम शर्मा मगध का राजा हुआ। भट्टियों ने ग्रंथ में लिखा है कि मौर्य कुल के मूल वंश से उत्पन्न हुए परमार नृपतिगण ही उस समय भारत के चक्रवर्ती राजा थे, और वे लोग कभी कभी उज्जैनी में ही अपनी राजधानी स्थापित करते थे। टॉड ने अपने राजस्थान में लिखा है कि जिस चंद्रगुप्त की महान प्रतिष्ठा का वर्णन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा है, उस चंद्रगुप्त का जन्म पवार कुल की मौर्य शाखा में हुआ है। संभव है कि विक्रम से 100 कुछ वर्ष पहले, जब मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र से हटी, तब इन लोगों ने उज्जैनी को प्रधानता दी और यहीं पर अपने एक प्रादेशिक शासक की जगह राजा की तरह रहने लगे। राजस्थान के में पवार कुल के मौर्य नृपतिगण ने इतिहास में बड़े बड़े कार्य किए, किंतु ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक प्रायः उन्हें गुप्तवंशी तथा अपर जातियों से युद्ध करना पड़ा। भट्टियों ने लिखा है कि उस समय मौर्य काल के परमार लोग कभी उज्जैनी को और कभी राजस्थान की धरा को अपनी राजधानी बताते थे। इसी दीर्घकाल व्यापिनी अस्थिरता से मौर्य लोग जिस तरह अपनी प्रभुता बनाए रहे, उस तरह किसी वीर और परिश्रमी जाति के सिवा दूसरा नहीं कर सकता। इसी जाति के महेश्वर नामक राजा ने विक्रम के 600 वर्ष बाद कार्त वीर्याजुण की प्राचीन महिष्मती को, जो नर्मदा के तट पर थी, फिर से बसाया और उसका नाम महेश्वर रखा। उन्हीं का पौत्र भोज हुआ। चित्रांगण मौर्य ने भी थोड़े ही समय के अंतर में चित्रकूट चित्तौर का पवित्र दुर्ग बनवाया, जो भारत के स्मारक चिन्हों में एक अपूर्व वस्तु है। गुप्त वंशियों ने जब अवंती मौर्य लोगों से ले ली, उसके बाद वीर मौर्यों के उद्योग से कई नगरियां बसाई गईं, और कितनी ही उन लोगों ने दूसरे राजाओं से ली। अबुर्दगिरी के प्राचीन भूभाग पर उन्हीं का अधिकार था। उस समय के राजस्थान के सब अच्छे अच्छे नगर प्रायः मौर्य राजगण के अधिकार में थे। विक्रम संवत 780 तक मौर्यों की प्रतिष्ठा राजस्थान में थी, और उस अंतिम प्रतिष्ठा को भारतवासी कभी न भूलेंगे, जो चित्तौड़ प्रति मौर्य नरनाथ मानसिंह के खलीफा वलिद को राजस्थान से विताड़ित करने का करके प्राप्त की थी। मान मौर्य के बनवाए हुए मानसरोवर में एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि महेश्वरी को भोज नाम का पुत्र हुआ था, जो धरा और मालव का अधीश्वर था, उसी से मान मौर्य हुए। इतिहास में 784 संवत में वाष्पा रावल का चित्तौर पर अधिकार करना लिखा है, तो इसमें संदेह नहीं रह जाता कि यदि मान मौर्य बप्पा रावल के द्वारा प्रवंचित हुआ, महाराज मान प्रसिद्ध बप्पादित्य के मातूल थे। बप्पादित्य के नगेंद्र से भागकर मान मौर्य के यहाँ आश्रय लिया, उन्हें यहाँ सामंत के रूप से रहने लगे। धीरे धीरे उनका अधिकार सब सामंतों से बढ़ा। तब सब सामंत उनसे डाह करने लगे, किंतु बप्पादित्य की सहायता से मान मौर्य ने यवनों को फिर भी पराजित किया। पर उन्हीं बप्पादित्य की दोधारी तलवार मान मौर्य के लिए काल भुजंगिनी और मौर्य कुल के लिए तो मानो प्रलय समुद्र की एक बड़ी लहर हुई। मान बप्पादित्य के हाथ से मारे गए और राजस्थान में मौर्य कुल का अब कोई राजा न रहा। यह घटना विक्रमीय संवत 784 की है। कोटा के कण्वाश्रम के शिव मंदिर एक शिलालेख संवत 995 का पाया गया है। उससे मालूम होता है कि 8वीं शताब्दी के अंत तक राजपुताना और मालवा पर मौर्य नृपतियों का अधिकार रहा। प्रसिद्ध मालवेश भोज भी परमार वंश का था, जो 1035 में हुआ। इस प्रकार परमार और मौर्य कुल पिछले काल के विवरणों से एक में मिलाए जाते हैं। इस बात की शंका हो सकती है कि मौर्य कुल का मूल शाखा परमार का नाम प्राचीन बौद्धों की पुस्तकों में क्यों नहीं मिलता। परंतु यह देखा जाता है कि जब एक विशाल जाति से एक छोटा सा कुल अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता बना लेता है, तब प्रायः वह अपनी प्राचीन संज्ञा को छोड़कर नवीन नाम को अधिक प्रधानता देता है। जैसे इक्ष्वाकुवंशी होने पर भी बुद्ध शाक के नाम से पुकारे गए, और जब शिलालेखों में मान मौर्य और परमार भोज के हम एक ही वंश में होने का प्रमाण पाते हैं, तब कोई संदेह नहीं रह जाता। हो सकता है मौर्यों के बौद्ध युग के बाद, जब इस शाखा का हिंदू धर्म की ओर अधिक झुकाव हुआ हो, परमार नाम फिर से लिया जाने लगा हो, क्योंकि मौर्य लोग बौद्ध प्रेम के कारण अधिक कुख्यात हो चुके थे। बौद्ध विद्वेष के कारण अशोक के वंश को अक्षत्रिय तथा नीच कुल का प्रमाणित करने के लिए मध्यकाल में अधिक उत्सुकता देखी जाती है, किंतु यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रसिद्ध परमार कुल और मौर्य वंश परस्पर संबंध है। इस प्रकार अज्ञात पिपल्ली कानन के एक कोने से निकलकर विक्रम संवत के 264 वर्ष पहले से 784 वर्ष बाद तक मौर्य लोगों ने पाटलिपुत्र, उज्जैन, धारा, महेश्वर, चित्तौर और अबूर्दगिरी आदि में अलग अलग अपनी राजधानियां स्थापित की, और लगभग 1050 वर्ष तक वे लोग मौर्य नरपति कह कर पुकारे गए। पिप्पली कानन के मौर्य। मौर्य कुल का सबसे प्राचीन स्थान पिप्पली कानन था। चंद्रगुप्त के आदि पुरुष मौर्य इसी स्थान के अधिपति थे, और यह राजवंश गौतम बुद्ध के समय में प्रतिष्ठित गिना जाता था, क्योंकि बौद्धों ने महात्मा बुद्ध के शरीर भस्म का एक भाग पाने वालों में पिप्पली कानन के मौर्यों का उल्लेख किया है। पिप्पली कानन बस्ती जिले में नेपाल की सीमा पर है। यहाँ ढूह और स्तूप है। इसे अब पिप रही या कोट कहते हैं। फाहियान ने स्तूप आदि देखकर भ्रमवश इसी को पहले कपिल वस्तु समझा था। मिस्टर पीपी ने इसी स्थान को पहले खुदवाया और बुद्ध देव की धातु तथा जो वस्तुएं मिली उन्हें गवर्नमेंट को अर्पित किया, तथा धातु का प्रधान अंश सरकार ने श्याम के राजा को दिया। इसी पिप्पली कानन में मौर्य लोग अपना छोटा सा राज्य स्वतंत्रता से संचालित करते थे, और ये क्षत्रिय थे। जैसा कि महावंश के इस अवतरण से सिद्ध होता है, मौर्यान खतियान वंश जातं श्रीधर चंद्रगुतो सिपंजत चाणक्यो ब्रह्मणो ततौ। हिंदू नाटककार विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त को प्रायः वृषल कहकर संबोधित कराया है। इससे उक्त हिंदू काल की मनोवृत्ति ही ध्वनित होती है। वस्तुतः विशल शब्द से तो उनका क्षत्रियत्व और भी प्रमाणित होता है, क्योंकि शन कैश्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय जात्य वृषलत्वं गता लोके ब्रह्मणानाम दर्शनात् से यह मालूम होता है कि जो क्षत्रिय लोग वैदिक क्रियाओं से उदासीन हो जाते थे उन्हें धार्मिक दृष्टि से वृषलभ प्राप्त होता था। वस्तुतः वे जाति से क्षत्रिय थे। स्वयं अशोक मौर्य अपने को क्षत्रिय कहता था। यह प्रवाद भी अधिकता से प्रचलित की है कि मौर्य वंश मूरा नाम की शूद्रा से चला है और चंद्रगुप्त उसका पुत्र था। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र मूरा से उत्पन्न हुआ नंद ही का पुत्र था। किंतु वी ए स्मिथ लिखते हैं, बट इट इज परहैप्स मोर प्रोबेबल दैट द डायनेस्टीज ऑफ मौर्यस एंड नंदास वाज नॉट कनेक्टेड बाय ब्लड। तात्पर्य यह है कि अधिक संभव है कि नंदों और मौर्यों का कोई रक्त संबंध न था। मैक्स मुलर भी लिखते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ विलफोर्ड दैट मौर्य मिंट इन संस्कृत द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ अ बाबर एंड शूद्र वोमेन हैज नेवर बीन प्रूव्ड। मूरा शूद्र द्रा तक ही नहीं रही, यह नापित भी आ गया। मौर्य शब्द की व्याख्या करने जाकर कैसे भ्रम फैलाया गया है। मूरा और मौर और मौर्य बन सकता है, न कि मौर्य। कुछ लोगों का अनुमान है कि शुद्ध शब्द मौर्य है, उसे संस्कृत शब्द मौर्य बना है, परंतु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि अशोक के कुछ ही समय बाद के पतंजलि ने स्पष्ट मौर्य शब्द का उल्लेख किया है। इसलिए मौर्य शब्द अपने शुद्ध रूप में संस्कृत का है, न कि कहीं से लेकर संस्कार किया गया है। तब तो यह स्पष्ट है कि मौर्य शब्द अपनी संस्कृति व्युत्पत्ति के द्वारा मूरा का पुत्र वाला अर्थ नहीं प्रकट करता। यह वास्तव में कपोल कल्पना है और यह भ्रम यूनानी लेखकों से प्रचारित किया गया है, जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है। अर्थकथा में मौर्य शब्द की एक और व्याख्या मिलती है। शाक्य लोगों में आपस में बुद्ध के जीवन काल में ही एक झगड़ा हुआ और कुछ लोग हिमवन के पिपली कानन प्रदेश में अपना नगर बसाकर रहने लगे। उस नगर के सुंदर घनों पर क्रौंच और मोर पक्षी के चित्र अंकित थे, इसलिए वहाँ के शाक्य लोग मौर्य कहलाए। कुछ सिक्के बिहार में भी मिले हैं जिन पर मयूर का चिन्ह अंकित है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो मौर्य काल के सिक्के हैं, किंतु इससे भी उनके क्षत्रिय होने का प्रमाण मिलता है। हिंदी मुद्रा राक्षस की भूमिका में भारतेंदु जी लिखते हैं कि महानंद जो कि नंद वंश का था, उसके 9 पुत्र उत्पन्न हुए, बड़ी रानी से 8 और मूरा नाम की नापित कन्या से 9वां चंद्रगुप्त। महानंद से एक और उसकी मंत्री शक्टार से वैमनस्य हो गया। इस कारण मंत्री ने चाणक्य द्वारा महानंद को मरवा डाला और चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राज्य पर बिठाया, जिसकी कथा मुद्रा राक्षस में प्रसिद्ध है। किंतु यह भूमिका जिसके आधार पर लिखी हुई है वह मूल संस्कृत मुद्रा राक्षस के टीकाकार का लिखा हुआ उपोद्घात है। भारतेंदु जी ने उसे भी अविकल ठीक न मानकर कथा साहित्य सागर के आधार पर उसका बहुत सा संशोधन किया है। कहीं कहीं उन्होंने कई कथाओं का उलटफेर भी कर दिया है, जैसे हिरण्ययुक्त के रहस्य के बतलाने पर राजा ने के फिर शक्टार से प्रसन्न होने की जगह विचक्षणा के उत्तर से प्रसन्न होकर शक्टार को छोड़ जाना तथा चाणक्य के द्वारा अभिचार से मरे जाने की जगह महानंद का विचक्षणा के दिए हुए विष से मारा जाना इत्यादि। ढूंढी लिखते हैं कि कली के आदि में नाम नंद नाम का एक राज्यवंश था। उसमें स्वार्थ सिद्धि मुख्य था। उसकी 2 रानियां थीं, एक सुनंदा दूसरी वृषला मूरा। सुनंदा को एक मांसपिंड और मूरा को एक मौर्य उत्पन्न हुआ। मौर्य से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। मंत्री राक्षस ने उस मांसपिंड को जल में 9 टुकड़े करके रखा, जिससे 9 पुत्र हुए। स्वार्थ सिद्धि अपने उन 9 लड़कों को राज्य देकर तपस्या करने चला गया। उन 9 नंदों ने मौर्य और उसके लड़कों को मार डाला। केवल एक चंद्रगुप्त प्राण बचाकर भागा, जो चाणक्य की सहायता से नंदो का नाश करके मगध का राजा बना। कथा शरित सागर के कथापीठ लंबक में चंद्रगुप्त के विषय में एक विचित्र कथा है। उसमें लिखा है कि नंद के मर जाने पर इंद्रदत्त, जो कि उसके पास गुरु दक्षिणा के लिए द्रव्य मांगने गया था, ने अपनी आत्मा को योग बल से राजा के शरीर में डाला और आप राज करने लगा। जब उसने अपने साथी वररुचि को 1 करोड़ रुपया देने के लिए कहा, तब मंत्री शकटार ने उसको राजा के मरकर फिर जी उठने पर पहले ही शंका थी विरोध किया। तब उसे योगनंद राजा ने चिढ़कर कैद कर लिया और वररुचि को अपना मंत्री बनाया। योगनंद बहुत विलासी हुआ। उसने सब राज्य भार मंत्री पर छोड़ दिया। उसकी ऐसी दशा देखकर वररुचि ने शकटार को छुड़ाया और दोनों मिलकर राज्य कार्य करने लगे। एक दिन योगनंद की रानी के चित्र में उसकी जांघ पर एक तिल बना देने से राजा ने वररुचि पर शंका करके शकटार को उसके मार डालने की आज्ञा दी, पर शकटार ने अपनी उपकारी को छिपा रखा है। योगनंद के पुत्र हिरण्यगुप्त ने जंगल में अपने मित्र ऋच से विश्वासघात किया। इससे वह पागल और गूंगा हो गया। राजा ने कहा, यदि वररुचि होता तो इसका कुछ उपाय करता। अनुकूल समय देखकर शकटार ने वररुचि को प्रकट किया। वररुचि ने हिरण्यगुप्त का सब रहस्य सुनाया और उसे निरोग किया। इस पर योगनंद ने पूछा कि तुम्हें यह बात कैसे ज्ञात हुई। वररुचि ने उत्तर दिया, योग बल से, जैसे रानी के जांग का तिल। राजा उस पर बहुत प्रसन्न हुआ, पर वह फिर न ठहरा और जंगल में चला गया। शकटार ने समय ठीक देखकर चाणक्य द्वारा योगनंद को मरवा डाला और चंद्रगुप्त को राज दिलाया। ठुंडी ने भी नाटक में वृषल और मौर्य शब्द का प्रयोग देखकर चंद्रगुप्त को मूरा का पुत्र लिखा है, पर पुराणों में कहीं भी चंद्रगुप्त को विषल या शूद्र नहीं लिखा है। पुराणों में जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है वह शूद्र जात महापद्म के लिए वंश के लिए है। यह नीचे लिखे हुए विष्णु पुराण के उद्दत अंश पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाएगा। नीचे लिखी हुई जो पंक्तियां हैं वो संस्कृत में हैं, अतः मैं उनका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। इससे यह मालूम होता है कि महानंद के पुत्र महापद्म ने, जो शूद्र जात था, अपने पिता के बाद राज्य किया और उसके बाद सुमाल्य आदि 8 लड़कों ने राज्य किया और इन सब ने मिलकर महानंद के बाद 100 वर्ष राज्य किया। इसके बाद चंद्रगुप्त को राज्य मिला। अब यह देखना चाहिए कि चंद्रगुप्त को जो लोग महानंद का पुत्र बताते हैं उन्हें कितना भ्रम है, क्योंकि उन लोगों ने लिखा है कि महानंद को मारकर चंद्रगुप्त ने राज्य किया, पर ऊपर लिखी हुई वंशावली से यह प्रकट हो जाता है कि महानंद के बाद 100 वर्ष तक महापद्म और उसके लड़कों ने राज्य किया। तब चंद्रगुप्त की आयु कितनी मानी जाए कि महानंद के बाद महापद्म आदि के 100 वर्ष राज्य कर लेने पर भी उसने 24 वर्ष शासन किया। यह एक विलक्षण बात होगी यदि नंदांतन क्षत्रिय कुलम के अनुसार शूद्र जात महापद्म और उसके लड़के तो क्षत्रिय मान लिए जाएं और अतः पर शूद्रा पृथ्वी भोक्षयंती के अनुसार शूद्रता चंद्रगुप्त से आरंभ की जाए। महानंद को जब शूद्रा का से एक ही लड़का महापद्म नंद था, तब दूसरा चंद्रगुप्त कहाँ से आया? पुराणों में चंद्रगुप्त को कहीं भी महानंद का पुत्र नहीं लिखा है। यदि सचमुच अंतिम नंद का ही नाम ग्रीकों ने जैंड्रमस रखा था, तो अवश्य ही हम कहेंगे कि विष्णु पुराण की महापद्म वाली कथा ग्रीकों से टिक मिल जाती है। यह अनुमान होता है कि महापद्म वाली कथा पीछे से बौद्ध द्वेषी लोगों के द्वारा चंद्रगुप्त की कथा में जोड़ी गई है, क्योंकि उसी का पौत्र अशोक बौद्ध धर्म का प्रधान प्रचारक था। ठुंडी के उपोदघात से एक बात और पता चलता है कि चंद्रगुप्त महानंद का पुत्र नहीं किंतु मौर्य सेनापति का पुत्र था। महापद्म आदि शुद्राभोदर्भव होने पर भी नंदवंशी कहाए। तब चंद्रगुप्त मुरा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण नंदवंशी होने से क्यों वंचित किया जाता है? इसलिए मानना पड़ेगा कि नंदवंश और मौर्य वंश भिन्न है। मौर्य वंश अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, जिसका उल्लेख पुराण बृहदकथा कामनंद किय इत्यादि में मिलता है और पिछले काल के चित्तौर आदि शिलालेखों में भी इसका उल्लेख है। इसी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त उत्पन्न हुआ। चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन, अर्थकथा स्थर विरावली कथा सरित सागर और ठुंडी के आधार पर चंद्रगुप्त के जीवन की प्राथमिक घटनाओं का पता चलता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र शोण और गंगा संगम पर थी। राजमंदिर, दुर्ग, लंबी चौड़ी पर्णवीथिका, प्रशस्त राजमार्ग इत्यादि राजधानी के किसी उपयोगी वस्तु का अभाव न था। खाई, सेना, रणतरी इत्यादि से वह सुरक्षित भी थी। इस उस समय महापद्म का वहां राज्य था। पुराण में वर्णित अखिल क्षत्रिय निर्धनकारी महापद्म नंद या कालशोक के लड़कों में सबसे बड़ा पुत्र एक नीच स्त्री से उत्पन्न हुआ था, जो मगध छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में रहता था। उस समय किसी डाकू से उसकी भेंट हो गई और वह अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्हीं डाकुओं के दल में मिल गया। तब उसका सरदार एक लड़ाई में मारा गया, तो वही राजकुमार उन सबों का नेता बन गया और उसने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की। उग्रसेन के नाम से उसे थोड़े दिनों के लिए पाटलिपुत्र का अधिकार छीन लिया। इसके बाद उसके 8 भाइयों ने कई वर्ष तक राज्य किया। 9वें नंद का नाम धनानंद था। उसने गंगा के घाट बनवाए और उसका प्रवाह को कुछ दिन के लिए हटाकर उसी जगह अपना भारी खजाना गाड़ दिया। उसे लोग धनानंद कहने लगे। धनानंद के अन्य क्षेत्र में एक दिन तक्षशिला निवासी चाणक्य ब्राह्मण आया और सबसे उच्च आसन पर बैठ गया, जिसे देखकर धनानंद चिढ़ गया और उसे अपमानित करके निकाल दिया। चाणक्य ने धनानंद का नाश करने की प्रतिज्ञा की। कहते हैं कि जब नंद बहुत विलासी हुआ तो उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई। प्राचीन मंत्री शकटार को बंदी करके उसने वरुचि नामक ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया। मगध निवासी उपवर्ष के 2 शिष्य थे, उनमें से पाणिनि तक्षशिला में विद्याभ्यास करने गया था, किंतु वररुचि, जिसकी राक्षस से मैत्री थी, नंद का मंत्री था। शकटार जब बंदी हुआ तब वररुचि ने उसे छुड़ाया और एक दिन वहीं दशा मंत्री वररुचि को भी की भी हुई। इसका नाम कात्यायन भी था। बौद्ध लोग इन्हें मगधदेशीय ब्रह्मबंधु लिखते हैं और पाणिनि के सूत्रों में यही वर्तिककार कात्यायन है। कितने लोगों का मत है कि कात्यायन और वररुचि भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। शकटार ने अपने वैर का समय पाया और वह विष प्रयोग द्वारा तथा एक दूसरे को लड़ाकर नंदों में आंतरिक द्वेष फैलाकर एक के बाद दूसरे को राजा बनाने लगा। धीरे धीरे नंदवंश का नाश हुआ और केवल अंतिम नंद बचा। उसने सावधानी से अपना राज्य संभाला और वररुचि को फिर मंत्री बनाया। शकटार ने प्रसिद्ध चाणक्य को, जो कि नीति शास्त्र विशारद होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए राजधानी में आया था, नंद का विरोधी बना दिया। वह क्रुद्ध ब्राह्मण अपनी प्रतिहिंसा पूरी करने के लिए सहायक ढूंढने लगा। पाटलिपुत्र के नगर प्रांत में पिप्पलिकानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन गृह था। महापद्मनंद के और उनके पुत्रों के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट में बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था उनका राजा। उन्हीं लड़कों में वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय कर रहा था। उसी ओर से चाणक्य जा रहे थे। उन्होंने उस बालक की राज्य क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उसके मन में कुतूहल हुआ और कुछ विनोद भी। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। बालक ने राज्योतित उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गौं को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो तुम ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन ये जिसकी गाय हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे शासन को न माने? जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्यपूर्वक बालक से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? तब तक बालक की माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज यह बड़ा धृष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। चाणक्य ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुमार राजकुल में ले जाओ। इतना कह बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। बालक की माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राज्यसभा में पहुंची। नंद एक निष्ठुर मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले के राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। जब बालक माँ के साथ राज्यसभा में पहुँचा उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राज्यसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के बंद पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया और उसके साथ यह कहलाया गया कि पिंजरों को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राज्यसभा इस पर विचार करने लगी पर उन चाटुकार मूर्खों सभासदों को कोई उपाय न सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था, वह भला कब मानने वाला था? उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठई भी कम न थी। राजा को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने कहा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राज्यबंदी मौर्य सेनापति का यह लड़का है। फिर क्या? नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रोधित होकर वह बोला, यदि तू इसे न निकाल सका तो तुझे भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह भी कहां से विपत्ति आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को गलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, चंद्रगुप्त। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त किशोरावस्था में नंदों की सभा में रहता था। वहाँ उसने अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया। पिपली कानन के मौर्य लोग नंदों के क्षत्रिय नाशकारी शासन से पीड़ित थे, प्रायः सब दबाए जा चुके थे। उस समय ये क्षत्रिय राजकुल नंदों की प्रधान शक्ति से आक्रांत थे। मौर्य भी नंदों की विशाल वाहिनी में सेनापति का काम करते थे। संभवतः वे किसी कारण से राजकोप में पड़े और उनका पुत्र चंद्रगुप्त नंदों की राज्यसभा में सपना समय बिताता था। उसके हृदय में नंदों के प्रति घृणा का होना स्वाभाविक था। जस्टिनस ने लिखा है, When by his innocent, insolent behavior, he was offended Nandas and was offered by king to be put to death. He sought safety by a speedy fight. चंद्रगुप्त ने किसी वाद विवाद या अनबन के कारण नंद को क्रूर कर दिया और इस बात में मौर्य लोगों का विवरण ठुंडी का उपोदघात तथा ग्रीक इतिहास लेखक सभी सहमत हैं कि उसे राज्य क्रोध के कारण पाटलिपुत्र छोड़ना पड़ा। शकटार और वररुचि के संबंध की कथाएं जो कथा सरित सागर में मिलती हैं इस बात का संकेत करती हैं कि महापद्म के पुत्र बड़े उच्च श्रृंखल और क्रूर शासक थे। गुप्त षड्यंत्रों से मगध पीड़ित था। राज्य कुल में भी नित्य नए उपद्रव विरोध और द्वंद्व चला करते थे। उन्हीं कारणों से चंद्रगुप्त भी कोई स्वतंत्र परिस्थिति उसे भावी नियति की ओर अग्रसर कर रही थी। चाणक्य की प्रेरणा से चंद्रगुप्त ने सीमा प्रांत की ओर प्रस्थान किया। महावंश के अनुसार बुद्ध निर्वाण के 140 वर्ष बाद अंतिम नंद को राज्य मिला। उसने 21 वर्ष राज्य किया। इसके बाद चंद्रगुप्त को राज्य मिला। यदि बुद्ध का निर्वाण 543 ईस्वी पूर्व ईशा पूर्व मान में मान लिया जाए तो उसमें से नंद राज तक का समय 162 वर्ष घटा देने से 381 पूर्व में चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि मानी जाएगी। पर यह सर्वथा भ्रामात्मक है क्योंकि ग्रीक इतिहास लेखकों ने लिखा है कि तक्षशिला में जब वह 326 ईसा पूर्व में सिकंदर से चंद्रगुप्त ने भेंट की थी तब वह युवक राजकुमार था। अस्तु यदि हम उनकी अवस्था उस समय 20 वर्ष के लगभग मान लें जो कि असंगत न होगी तो उनका जन्म 346 ईसा पूर्व के लगभग हुआ होगा। मगध के राज्य विद्रोह काल में वह 19 या 20 वर्ष का रहा होगा। मगध से चंद्रगुप्त के निकलने की तिथि ईसा पूर्व 327-28 निर्धारित की जा सकती है क्योंकि 326 में वह सिकंदर से तक्षशिला में ही मिला था। उसके प्रवास की कथा बड़ी रोचक है। सिकंदर जिस समय भारत में पदार्पण कर रहा था और भारतीय जनता के सर्वनाश का उपक्रम तक्षशिलाधीश्वर ने करना विचार लिया था वह समय भारत के इतिहास में स्मरणीय है। तक्षशिला नगरी अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। यहाँ का विश्वविद्यालय पाणिनि और जीवक जैसे छात्रों का शिक्षक हो चुका था। वही तक्षशिला अपनी स्वतंत्रता पद दलित कराने के लिए की आकांक्षा में आकल थी और उसका उपक्रम भी हो चुका था। कूटनीति चतुर सिकंदर ने जैसा कि ग्रीक लोग कहते हैं 1000 टैलेंट देकर लोलुप देशद्रोही तक्षशिलाधीश को अपना मित्र बनाया। उसने प्रसन्न मन से अपनी कायरता का मार्ग खोल दिया और बिना बाधा सिकंदर को भारत में आने दिया। ग्रीक ग्रंथकारों के द्वारा हम यह पाते हैं कि ईसा पूर्व 526 में उसी समय चंद्रगुप्त शत्रुओं से बदला लेने के उद्योग में अनेक प्रकार का कष्ट मार्ग झेलते झेलते भारत की अर्गला तक्षशिला नगरी में पहुंचा। तक्षशिला के राजा ने भी महाराज पुरु से अपना बदला लेने के लिए भारत का द्वार मुक्त कर दिया। उन्हीं ग्रीक ग्रंथकारों के द्वारा यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने यह सप्ताह भी अपने को परमुखापेक्षी नहीं बना रखा और वह क्रुद्ध होकर वहां से चला आया। जस्टिनस लिखता है कि उसने अपनी असहनशीलता के कारण सिकंदर को असंतुष्ट किया। वह सिकंदर का पूरा विरोधी बन गया। फॉर हैविंग ऑफेंडेड अलेक्जेंडर बाय हिज इम्पर्टिनेंट लैंग्वेज ही वॉज ऑर्डर्ड टू बी पुट टू डेथ एंड एस्केप्ड ओनली बाय फाइट। सिकंदर और चंद्रगुप्त पंजाब में। सिकंदर और चंद्रगुप्त पंजाब में। सिकंदर ने तक्षशिलाधीश की सहायता से झेलम को पार करके पोरस के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में क्षत्रिय महाराज पर्वतेश्वर पुरु किस तरह लड़े और वह कैसा भयंकर युद्ध हुआ यह केवल इससे ज्ञात होता है कि स्वयं जग द्विजयी सिकंदर को कहना पड़ा, आज हमको अपनी बराबरी का भीम पराक्रम शत्रु मिला और यूनानियों को तुल्य बल से आज युद्ध करना पड़ा। इतना ही नहीं, सिकंदर का प्रसिद्ध अश्व बुकाफेलस इस युद्ध में हत हुआ और सिकंदर स्वयं भी आहत हुआ। यह अनिश्चित है कि सिकंदर को मगध पर आक्रमण करने को उत्तेजित करने के लिए ही चंद्रगुप्त उसके पास गया था अथवा ग्रीक युद्ध की शिक्षा पद्धति सीखने के लिए वहां गया था। उसने सिकंदर से तक्षशिला में अवश्य भेंट की थी यद्यपि उसका कोई कार्य वहां नहीं हुआ पर उसे ग्रीक वाहिनी की रणचर्या अवश्य ज्ञात हुई जिससे कि उसने पार्वत्य सेना से मगध राज्य का ध्वंस किया। क्रमशः वृत्तसत्ता चंद्रभागा ईरावती के प्रदेशों को विजय करता हुआ सिकंदर विपाशा तट तक आया और फिर मगध राज्य का प्रचंड प्रताप सुनकर उसने दिग्विजय की इच्छा को त्याग दिया और 325 ईसा पूर्व में फिलिप नामक पुरुष को क्षत्रप बनाकर अपना काबुल की ओर चला गया। दो वर्षों के बीच चंद्रगुप्त भी उसी प्रांत में घूमता रहा और जब वह सिकंदर का विरोधी बन गया तो उसी ने पार्वत्य जातियों को सिकंदर से लड़ने के लिए उत्तेजित किया और जिनके कारण सिकंदर को इरावती से पाटन तक पहुंचने में 10 मास का समय लग गया और इस बीच में इन आक्रमणकारियों ने सिकंदर की बहुत क्षति की। इस मार्ग में सिकंदर को मालव जाति से युद्ध करने में बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक दुर्ग के युद्ध में तो उसे ऐसा अस्त्राघात मिला कि वह महीनों तक कड़ी बीमार झेलता रहा। जल मार्ग से जाने वाले सिपाहियों को निश्चय हो गया कि सिकंदर मर गया। किसी किसी का मत है कि सिकंदर की मृत्यु का कारण वही घाव था। सिकंदर भारतवर्ष लूटने आया था, पर जाते समय उसकी यह अवस्था हुई कि आर्य भाव से अपने सेक्रेटरी यूडामिनिस से उसने कुछ द्रव्य मांगा और न पाने पर उसका कैंप फुकवा दिया। सिकंदर ने भारतवर्ष में रहने के समय में ही चंद्रगुप्त द्वारा परिचारित सिकंदर द्रोह पूर्ण रूप से फैल गया था और इसी समय कुछ पार्वत्य राजा चंद्रगुप्त को के विशेष अनुगत हो गए थे। उनको रण चतुर बनाकर चंद्रगुप्त ने एक अच्छी शिक्षित सेना प्रयुक्त कर ली और जिसकी परीक्षा प्रथमतः ग्रीक सैनिकों ने ली। इसी गड़बड़ में फिलिप मारा गया और उस प्रदेश के लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। चंद्रगुप्त को पर्वतीय सैनिकों से बड़ी सहायता मिली और वे उसके मित्र बन गए। विदेशी शत्रुओं के साथ भारतवासियों का युद्ध देखकर चंद्रगुप्त एक रणचतुर नेता बन गया। धीरे धीरे उसने सीमावासी पर्वतीय लोगों को एक में मिला लिया। चंद्रगुप्त और पर्वतेश्वर विजय के हिस्सेदार हुए और सम्मिलित शक्ति से मगध राज्य विजय करने के लिए चल पड़े। अब यह देखना चाहिए कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की सहायक सेना में कौन कौन देश की सेनाएं थीं और वे कब पंजाब से चले। बहुत से विद्वानों का मत है कि जो सेना चंद्रगुप्त के साथ थी वह ग्रीकों की थी। यह बात बिल्कुल असंगत नहीं प्रतीत होती। जब फिलिप तक्षशिला के समीप मारा गया तो संभव है कि बिना सरदार की सेना में किसी प्रकार पर्वतेश्वर ने कुछ ग्रीकों की सेना को अपनी ओर मिला लिया हो, जो कि केवल धन के लालच में ग्रीस छोड़कर भारत भूमि तक आए थे। उस सम्मिलित आक्रमणकारी सेना में कुछ ग्रीकों का होना असंभव नहीं है, क्योंकि मुद्रा राक्षस के टीकाकार ठुंडी लिखते हैं, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। अगेन सॉरी फॉर माई संस्कृत लैंग्वेज। तैलंग महाशय लिखते हैं, द यावनावा रेफर्ड इन अवर प्ले मुद्रा राक्षस व प्रोबेबली सम ऑफ द फ्रंटियर ट्राइब्स। कुछ तो उस सम्मिलित सेना के नीचे लिखे हुए नाम हैं जिन्होंने महाशय तैलंग ने लिखा। मुद्रा राक्षस शक तैलंग सीदियन, मुद्रा राक्षस यवन तैलंग अफगान, मुद्रा राक्षस किरात तैलंग सेवेज ट्राइब, मुद्रा राक्षस पारसिक तैलंग पर्सियन, मुद्रा राक्षस वाल्हिक तैलंग बैक्ट्रियन। इस सूची को देखने से ज्ञात होता है कि ये सब जातियां प्रायः भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में स्थित हैं। इस सेना में उपयुक्त जातियां प्रायः सम्मिलित हो रही हों तो असंभव नहीं है। चंद्रगुप्त ने असभ्य सेनाओं को ग्रीक प्रणाली से शिक्षित करके उन्हें अपने कार्य योग्य बनाया। मेरा अनुमान यह है कि 323 ईसा पूर्व में हुई, क्योंकि वही सिकंदर के मरने का समय है। उसी समय यूडेमिस नामक ग्रीक कर्मचारी और तक्षशिलाधीश के कुचक से फिलिप के द्वारा पुरु की हत्या हुई थी। अस्तु पंजाब प्रांत के एक प्रकार से अराजक हो गया और 322 ईसा पूर्व में इन सबों को स्वतंत्र बनाते हुए 321 ईसा पूर्व में मगध राजधानी पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त ने जा घेरा। मगध में चंद्रगुप्त अपमानित चंद्रगुप्त बदला लेने के लिए खड़ा था। मगध राज्य की दशा बड़ी शोचनीय थी। नंद आंतरिक विग्रह के कारण जर्जरित हो गया था। चाणक्य चलित मलेच्छ सेना कुसुमपुर के चारों ओर घेरे थी। चंद्रगुप्त अपनी शिक्षित सेना को बराबर उत्साहित करता हुआ सचतुर रण सेनापति का कार्य करने लगा। 15 दिन तक कुसुमपुर को बराबर घेरे रहने के कारण और बार बार खंड युद्ध में विजयी होने के कारण चंद्रगुप्त एक प्रकार से मगध विजयी हो गया। नंद ने, जो कि पूर्वकृत पापों के भीत और आतुर हो गया, नगर से निकलकर चले जाने की आज्ञा मांगी। चंद्रगुप्त इस बात से सहमत हो गया कि धनानंद अपने साथ जो कुछ ले जा सके ले जाए, पर चाणक्य की एक चाल यह भी थी, क्योंकि उसे मगध की प्रजा पर शासन करना था, इसलिए यदि धनानंद मारा जाता तो प्रजा के विद्रोह करने की संभावना थी। इसमें स्वय वीरावली तथा ठुंडी के विवरण में मतभेद है, क्योंकि स्थल वीरावलीकार लिखते हैं कि चाणक्य ने धनानंद को चले जाने की आज्ञा दी, पर ठुंडी कहते हैं चाणक्य के द्वारा शस्त्र से धनानंद निहित हुआ। मुद्रा राक्षस से जाना जाता है कि वह विष प्रयोग से मारा गया, पर यह बात पहले नंदों के लिए संभव प्रतीत होती है। चाणक्य की नीति की ओर दृष्टि डालने से यही ज्ञात होता है कि जानबूझकर नंद को अवसर दिया गया और इसके बाद किसी गुप्त प्रकार से उसकी सहायता हुई। कई लोगों का मत है कि पर्वतेश्वर की हत्या बिना अपराध चाणक्य ने की, पर जहां तक संभव है पर्वतेश्वर को कात्यायन के साथ मिला हुआ जानकर ही चाणक्य के द्वारा विषकन्या पर्वतेश्वर को मिली, और यही मत भारतेंदु जी का भी है। मुद्रा राक्षस को देखने से यही ज्ञात होता है कि राक्षस पीछे पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु से मिल गया। संभव है कि उसका पिता भी वररुचि की ओर पहले मिल गया हो, और इसी बात को जान लेने पर चंद्रगुप्त की हानि की संभावना देकर किसी उपाय से पर्वतेश्वर की हत्या हुई हो। तत्कालिक स्फुरण विवरणों से ज्ञात होता है कि मगध की प्रजा और समीपवर्ती जातियों चंद्रगुप्त के प्रतिपक्ष में खड़ी हुई। उस लड़ाई में अपनी कूटनीति द्वारा चाणक्य ने आपस में भेद करा दिया। प्रबल उत्साह के कारण अविराम परिश्रम और अध्यवसाय के से अपने बाहुबल और चाणक्य के बुद्धिबल से सामान्य भूस्वामी चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बौद्ध की पहली सभा काल अशोक या महापद्म से समय हुई के समय हुई। बुद्ध के 90 वर्ष बाद यह गद्दी पर बैठा और इसके राज्य के 10 वर्ष बाद सभा हुई। उसके बाद 18 वर्ष राज्य किया। यह 118 का समय बुद्ध के निर्वाण से काल अशोक के राजत्व काल तक है। काल अशोक का पुत्र 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 22 वर्ष तक नंद, उसके बाद चंद्रगुप्त को राज्य मिला। बुद्ध निर्वाण से 162 वर्ष बाद चंद्रगुप्त को राज्य मिला। बुद्ध का समय यदि 543 ईस्वी ईसा पूर्व माना जाए तो 543 माइनस 162 बराबर 381 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त का राज्यारोहण निर्धारित होता है। दूसरा मत मैक्स मूलर आदि विद्वानों का है कि बुद्ध निर्वाण 477 ईसा पूर्व में हुआ। इस प्रकार उक्त राज्यारोहण का समय 315 ईसा पूर्व निकलता है। इससे ग्रीक समय का मिलान करने से एक तो 40 वर्ष बढ़ जाता है, दूसरा 5 या 6 वर्ष घट जाता है। महावीर स्वामी के निर्वाण से 155 वर्ष बाद चंद्रगुप्त जैनियों के मत से राज्य पर बैठा, ऐसा मालूम होता है। आर्य विद्या सुधाकर के अनुसार 470 विक्रम संवत पू में महावीर स्वामी का वर्तमान होना पाया जाता है। इससे यदि 520 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निर्वाण मान ले तो उसमें से 115 घटा देने से 165 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राज्यारोहण का समय होता है, जो सर्वथा असंभव है। यह मत भी बहुत भ्रमपूर्ण है। पंडित रामचंद्र जी शुक्ल ने मेगास्थनीज की भूमिका में लिखा है कि 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा और 292 तक ईसा पूर्व तक उसने 24 वर्ष राज्य किया। पंडित जी ने जो पाश्चात्य लेखकों के आधार पर चंद्रगुप्त का राज्यारोहण समय लिखा है वह भी भ्रम से रहित नहीं है, क्योंकि स्ट्रैबो के मतानुसार 256 में डीमेचोस का मिशन बिंदुसार के समय में आया। यदि 292 तक चंद्रगुप्त का राज्यकाल मान लिया जाए तो डिमाकस चंद्रगुप्त के राजत्व काल में ही आया था ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि शुक्ल जी के मत में 316 ईसा पूर्व से 292 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त का राजत्व काल है। डिमाकस के मिशन का समय 296 ईस्वी ईसा पूर्व जिसके अंतर्गत हो जाता है। यदि हम चंद्रगुप्त का राज्य रोहण 321 ईसा पूर्व मान लें तो उसमें से उसका राजत्व काल 24 वर्ष घटा देने से 297 ईसा पूर्व तक उसका राजत्व काल और 296 ईसा पूर्व में बिंदुसार का राज्यरोहण और डिमाकस के मिशन का समय ठीक हो जाता है। ऐतिहासिकों का अनुमान है कि 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, यह भी ठीक हो जाता है क्योंकि पूर्व निर्धारित चंद्रगुप्त के जन्म समय 346 ईसा पूर्व से 25 वर्ष घटा देने से भी 321 ईसा पूर्व ही बचता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में मगध राज्य के सिंहासन पर 321 ईसा पूर्व में आसीन हुआ। विजय। उस समय गंगा के तट पर दो विस्तृत राज थे, जैसा कि मेगास्थनीज लिखता है, एक प्राच्य प्रासी और दूसरा गंगा रेडीज। प्राच्य राज्य में अवंती, कोसल, मध्य वाराणसी, बिहार आदि देश थे और दूसरा गंगा रेडीज गंगा के उस भाग के तट पर था जो कि समुद्र के समीप में था, वह बंगाल का था। गंगा रेडीज और गोंड एक ही देश का नाम प्रतीत होता है। गोंड राज्य का राजा नंद के अधीन था। अवंती में भी एक मध्य प्रदेश की राजधानी थी, वह भी नंदाधीन था। बौद्धों के विवरण से ज्ञात होता है कि ताम्रलिप्ति, जिसे अब तमलुक कहते हैं, मिदनापुर जिले में उस समय समुद्र तट पर अवस्थित गंगा रेडीज के प्रसिद्ध नगरों में था। प्राच्य देश की राजधानी पालबोधा थी, जिसे पाटलिपुत्र कहना असंगत न होगा। मेगास्थनीज लिखता है कि गंगा रेडीज की राजधानी पार्थलिस थी। डॉक्टर श्यानवक का मत है कि संभवतः यह वर्धमान ही था, जिसे ग्रीक लोग पार्थलिस कहते थे। इसमें विवाद करने का अवसर नहीं है, क्योंकि वर्धमान गौड देश के प्राचीन नगरों में है और यह राजधानी के योग्य भूमि पर बसा हुआ है। केवल नंद को ही पराजित करने से चंद्रगुप्त को एक बड़ा विस्तृत राज्य मिला, जो असम से लेकर भारत के मध्य प्रदेश तक व्याप्त था। अशोक के जीवनकार कहते हैं कि अशोक का राज्य चार प्रादेशिक शासकों से शासित होता था। तक्षशिला पंजाब और अफगानिस्तान की राजधानी थी। तोशाली कलिंकी अवंती मध्य प्रदेश की और स्वर्णगिरी भारतवर्ष के दक्षिण भाग की राजधानी थी। अशोक की जीवनी से ज्ञात होता है कि उसने केवल कलिंग ही विजय किया था। बिंदुसार की विजयों की गाथा कहीं नहीं मिलती। मिस्टर स्मिथ ने लिखा है, इट इज मोर प्रोबेबल दैट द कंक्वेस्ट ऑफ द साउथ वॉज द वर्क ऑफ बिंदुसार, हु वॉज द फादर ऑफ अशोक एंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु एस्टैब्लिश्ड The Maurya Dynasty। परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रायद्वीप खंड को जीतकर चंद्रगुप्त ने स्वर्णगिरी में उसका शासक रखा और संभवतः यह घटना उस समय की है जब विजेता सेल्यूकस एक विशाल साम्राज्य की नींव सीरिया प्रवेश में डाल रहा था। वह घटना 316 ईसा पूर्व में है। इस समय चंद्रगुप्त का शासन भारतवर्ष में प्रधान था और छोटे छोटे राज्य यद्यपि स्वतंत्र थे, पर वे भी चंद्रगुप्त के शासन से सदा भयभीत होकर मित्र भाव का वर्ताव रखते थे। उसका राज्य पांडुचेर और कन्नानूर के हिमालय की तराई तक, सतलज से आसाम तक था, तथा कुछ राज्य दक्षिण में जैसे केरल इत्यादि और पंजाब में वे प्रदेश जिन्हें सिकंदर ने विजय किया था स्वतंत्र थे, किंतु चंद्रगुप्त पर ईश्वर की अपार कृपा थी जिसने उसे ऐसा सुयोग दिया कि यह भी ग्रीस इत्यादि विदेशों में अपना आतंक फैलाए। सिकंदर के मर जाने के बाद ग्रीक जनरलों में भारी स्वतंत्रता अराजकता फैल गई। ईसा पूर्व 323 में सिकंदर मरा, उसके प्रतिनिधित्व रूप स्वरूप पार्दिकस शासन करने लगा, किंतु इससे भी असंतोष हुआ। सब जनरलों और प्रधान कर्मचारियों ने मिलकर एक सभा की। ईसा पूर्व 321 में सभा हुई और सेल्यूकस बेबीलोन की गद्दी पर बैठ गया। टालमी आदि मिस्र के राजा समझे जाने लगे, पर एंटीगोनस जो कि पूर्वी एशिया का क्षत्रप था अपने बल को बढ़ाने लगा और इसी कारण जनरल उससे वृद्ध हो गया। यहाँ तक कि ग्रीक का साम्राज्य से अलग होकर सेल्यूकस ने 312 ईसा पूर्व में अपनी स्वाधीन राज्य स्थापित किया। बहुत सी लड़ाइयों के बाद संधि हुई और सीरिया इत्यादि प्रदेशों का एंटीगोनस स्वतंत्र राजा हुआ। थेस में लिरिमाकस मिस्र की टॉलमी और बेबीलोन के समीप के प्रदेश में सेल्यूकस का अधिपत्य रहा। यह संधि 319 ईसा पूर्व में हुई। सेल्यूकस ने उधर विग्रहों को कुछ शांत करके भारत की ओर देखा। इससे भी वह ग्रीक साम्राज्य का एक अंश समझता था। अराकोशिया, बैक्ट्रिया, जेड्रेसिया आदि विजय करते हुए उसने 306 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त उसी समय दिग्विजय करता हुआ पंजाब की ओर आ रहा था और उसने जब सुना कि ग्रीक लोग फिर भारत पर चढ़ाई कर रहे हैं, तब वह वहीं उन्हीं की ओर चल पड़ा। इस यात्रा में ग्रीक लोग लिखते हैं कि उसके पास 600,000 सैनिक थे, जिसमें 30,000 घोड़े, 9,000 हाथी, बाकी पैदल थे। इतिहासों से पता चलता है कि सिंधु तट पर यह युद्ध हुआ। सेल्यूकस सिंधु के उसी तीर पर आ गया जहां मौर्य सम्राट इस आक्रमण से अनभिज्ञ था। इसके प्रादेशिक शासक जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत के थे बराबर सेल्यूकस का गतिरोध करने के लिए प्रस्तुत रहते थे, पर अनेक उद्योग करने पर भी कपिशा आदि दुर्ग सेल्यूकस के हस्तगत हो ही गए। चंद्रगुप्त जो कि सतलज के समीप से उसी की ओर बराबर बढ़ रहा था, सेल्यूकस की क्षुद्र विजयों से घबराकर बहुत शीघ्रता से तक्षशिला की ओर चल पड़ा। चंद्रगुप्त के बहुत थोड़े समय पहले ही सेल्यूकस सिंधु के इस पार उतर आया और तक्षशिला के दुर्ग पर चढ़ाई करने में उद्योग में था। तक्षशिला की सूबेदारी बहुत बड़ी थी, उस पर विजय कर लेना सहज कार्य न था। सेल्यूकस अपनी रक्षा के लिए मिट्टी की खाई बनवाने लगा। चंद्रगुप्त अपनी विजयी सेना लेकर तक्षशिला में पहुंचा और मौर्य पताका तक्षशिला की दुर्ग पर फहरा कर महाराज चंद्रगुप्त के आगमन की सूचना देने लगा। मौर्य सेना ने आक्रमण करके ग्रीकों की मिट्टी की परिखा और उनका व्यूह नष्ट भ्रष्ट कर डाला। मौर्यों का वह भयानक आक्रमण उन लोगों ने बड़ी वीरता से सहन किया। ग्रीकों का कृत्रिम दुर्ग उनकी रक्षा कर रहा था, पर तब कब तक चारों ओर से असंख्य मौर्य सेना उस दुर्ग को घेरे थी। आपातः उन्हें कृत्रिम दुर्ग छोड़ना पड़ा। इस बार भयानक लड़ाई आरंभ हुई। मौर्य सेना का चंद्रगुप्त स्वयं नायक था। असीम उत्साह से मौर्य ने आक्रमण करके ग्रीक सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। लौटने की राह में बड़ी बाधा स्वरूप सिंधु नदी थी, इसलिए अपनी टूटी हुई सेना को एक जगह उन्होंने एकत्र किया। चंद्रगुप्त की विजय हुई। इसी समय ग्रीक जनरलों में कीर खलबली मची हुई थी। इस कारण सेल्यूकस शीघ्र ही संधि कर लेने पर बाध्य हुआ। इस संधि में ग्रीक लोगों को चंद्रगुप्त और चाणक्य से सब ओर दबना पड़ा। इस संधि के समय में कुछ मतभेद हैं। किसी का मत है कि यह संधि 305 ईसा पूर्व में हुई और कुछ लोग कहते हैं कि 303 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस ने जो ग्रीक संधि की थी वह 311 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद ही वह युद्ध यात्रा के लिए चल पड़ा। अस्तु आर्कोशिया, जेड्रेशिया और बैक्ट्रिया आदि विजय करते हुए भारत तक आने में 5 वर्ष से विशेष समय नहीं लग सकता और इसी से उस युद्ध का समय जो कि चंद्रगुप्त से उसका हुआ था 306 ईसा पूर्व माना गया। तब 305 ईसा पूर्व में संधि होना ठीक सा जचता है। संधि में चंद्रगुप्त भारतीय प्रदेशों के स्वामी हुए। अफगानिस्तान और मकराना भी चंद्रगुप्त को मिला और उसके साथ ही साथ कुल पंजाब और सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। सेल्यूकस बहुत ही शीघ्र लौटने वाला था। 301 ईसा पूर्व में होने वाले युद्ध के लिए उसे तैयार होना था, जिसमें कि इप्सस के मैदान में उसने अपने चीर शत्रु एंटीगोनस को मारा था। चंद्रगुप्त को इस ग्रीक विप्लव से बहुत सहायता दी और उसने इसी कारण मनमाने नियमों से संधि करने के लिए सेल्यूकस को बाध्य किया। पाटन आदि बंदर भी चंद्रगुप्त के अधीन हुए तथा काबुल में सेल्यूकस की ओर से एक राजदूत का रहना स्थिर हुआ। मेगास्थनीज ही प्रथम राजदूत नियत हुआ। यह तो सब हुआ, पर नीति चतुर सेल्यूकस ने एक और बुद्धिमानी का कार्य यह किया कि चंद्रगुप्त से अपनी सुंदरी कन्या का पणिग्रहण करा ले दिया, जिसे चंद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया और दोनों राज्य एक संबंध सूत्र में बंध गए, जिस पर संतुष्ट होकर चंद्रगुप्त ने 500 हाथियों की एक सेना सेल्यूकस को दी और अब चंद्रगुप्त का राज्य भारतवर्ष में सर्वत्र हो गया। रुद्रदमन के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्पगुप्त उस प्रदेश का शासक नियत किया गया था जो सौराष्ट्र और सिंध तथा राजपुताना तक था। अब चंद्रगुप्त के अधीन दो प्रादेशिक और हुए तथा तक्षशिला में दूसरा सौराष्ट्र में। इस तरह से अध्यवसाय का अवतार चंद्रगुप्त प्रबल प्रकांडता राजा माना जाने लगा और ग्रीस, मिस्र, सीरिया इत्यादि नरेश उसकी मित्रता में अपना गौरव समझते थे। उत्तर में हिंदू कुश, दक्षिण में पांडिचेरी और कनानूर, पूर्व में असम और पश्चिम में सौराष्ट्र, समुद्र तक तथा वाहलिक तक चंद्रगुप्त के राज्य सीमा निर्धारित की जा सकती है। चंद्रगुप्त का शासन। गंगा और शोण के तट पर मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र बसा था। दुर्ग पत्थर तथा ईंट लकड़ी से बने हुए सुदृढ़ प्राचीर से परिवेष्टित था। नगर 80 स्टेडिया लंबा और 30 स्टेडिया चौड़ा था। दुर्ग में 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। सौर्ध श्रेणी राजमार्ग सुविस्तृत पाण्यवीथिका से नगर पूर्ण था और व्यापारियों की दुकानें अच्छी प्रकार सुशोभित और सज्जित रहती थीं। भारतवर्ष की केंद्र नगरी कुसुमपुरी वास्तव में कुसुमपूर्ण रहती थी। सुसज्जित तरंगों पर धनाढ्य लोग प्रायः राजमार्गों में यातायात किया करते थे। गंगा के कुल में बने हुए सुंदर राज मंदिर में चंद्रगुप्त रहता था और केवल 3 कामों के लिए महल से बाहर आता। पहला, प्रजाओं का आवेदन सुनना, जिसके लिए प्रतिदिन एक बार चंद्रगुप्त को विचारक का आसन ग्रहण करना पड़ता था। उस समय प्रायः तुरंग पर जो आभूषणों से सजा हुआ रहता था, चंद्रगुप्त आरोहण करना और प्रतिदिन न्याय से प्रजा का शासन करता था। दूसरा, धर्मानुष्ठान बलि प्रदान करने के लिए, जो पर्व और उत्सव के उपलक्ष्यों पर होते थे। मुक्ता गुच्छ शोभित कारु कार्य खचित शिविका पर चंद्रगुप्त आरोहण करता था। इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त वैदिक धर्मावलंबी था, क्योंकि बौद्ध और जैन यही धर्म उस समय वैदिक के प्रतिकूल प्रचलित थे। बलि प्रथा दाननिक कर्म वैदिक हो ही होता रहा होगा। अरे तीसरा, मृगया खेलने के समय कुंजर पर सवारी निकली। उस समय चंद्रगुप्त स्त्रीगण से घिरा रहता था, जो धनुष बाण आदि लिए उसके शरीर की रक्षा करता। उस समय राजमार्ग डोरी से घिरा रहता और कोई उसके भीतर नहीं जाने पाता। चंद्रगुप्त राज्यसभा में बैठता तो 4 सेवक आबनूस के बेलन से उसका अंग संवाहन करते। यद्यपि चंद्रगुप्त प्रबल प्रतापी राजा था, वह पर्व षड्यंत्रों से संकित होकर एक स्थान पर सदा नहीं रहता था, जिसका कि मुद्रा राक्षस में कुछ आभास मिलता है और यह मेगास्थनीज ने भी लिखा है। हाथी, पहलवान, मेढा और गैंडों की लड़ाई भी होती थी, जिसे राजा और प्रजा दोनों बड़े चाव से देखते थे। बहुत से उत्सव भी नगर में हुआ करते थे। प्रहरी स्त्रियां, जो कि मोल ली जाती थीं, राजा के शरीर की सदा रक्षा करती थीं। वे रथों, घोड़ों और हाथियों पर राजा के साथ चलती थीं। राज दरबार बहुत आडंबर से सजा रहता था, जो कि दर्शनीय रहता था। मेगास्थनीज इत्यादि ने इसका वर्णन विस्तृत रूप में लिखा है। पाटलिपुत्र नगर मौर्य राजधानी होने से बहुत उन्नत अवस्था में था। राजधानी में नगर का शासन प्रबंध भी 6 विभागों में विभक्त था और उसके द्वारा पूर्ण रूप से नगर का प्रबंध होता था। मेगास्थनीज लिखता है कि प्रथम विभाग उन कर्मचारियों का था जो विक्रय वस्तु का मूल्य निर्धारण और श्रमजीवियों का वेतन तथा शिल्पियों का शुल्क निर्धारण तथा निरीक्षण करता था। किसी शिल्पों के अंग भंग करने से वही विभाग उन लोगों को दंड देता था। संभवतः यह विभाग म्यूनिसिपैलिटी के बराबर था जो 5 सदस्यों के कार्य से कार्य निर्वहन करता था। द्वितीय विभाग विदेशियों के व्यवहार पर ध्यान रखता था, पीड़ित विदेशियों की सेवा करता था, उनके जाने के लिए वाहन आदि आयोजन करना, उनके मरने पर उनकी संपत्ति की व्यवस्था करना और उन्हें जो हानि पहुंचाए उसको कठोर दंड से दंडित करना उनका कार्य था। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार अथवा अन्य कार्यों के लिए बहुत से विदेशी कुसुमपुर में आया करते थे। तृतीय विभाग प्रजा के मरण और जन्म की गणना करना था और उन पर कर निर्धारित करता था। चतुर्थ विभाग व्यापार का निरीक्षण करता था और तुला तथा नाप का प्रबंध करता था। पंचम विभाग राजकीय कोष का था जहां द्रव्य बनाए जाते थे और रक्षित रहते थे। छठा विभाग राजकीय कर का था जिसमें व्यापारियों के लाभ के से दशमांश लिया जाता था और उन्हें खूब सावधानी से कार्य करना होता था। जो इस कर को न देता वह कठोर दंड से दंडित होता था। राज्य के कर्मचारी लोग भूमि का नाप और उस समय पर कर निर्धारण करते थे और जल की नहरों का समुचित प्रबंध करते थे जिससे सब कृषकों को सरलता होती थी। रुद्रदमा को गिरनार वाले लेख से प्रतीत होता है कि सुदर्शन महाराज चंद्रगुप्त के राजत्व काल में बना था। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में सर्वत्र जल का प्रबंध रहता था तथा कृषकों के लाभ पर विशेष ध्यान रहता था। राज्य के प्रत्येक प्रांत में समाचार संग्रह करने वाले थे जो सत्य समाचार चंद्रगुप्त को देते थे। चाणक्य शाह बुद्धिमान मंत्री चंद्रगुप्त को बड़े भाग्य से मिला था और उसकी विद्वता ऊपर लिखित प्रबंधों से ज्ञात होती है। युद्धादि के समय में भी भूमि बराबर जोती जाती थी, उसके लिए कोई बाधा नहीं थी। राजकीय सेना में जिसे राजा अपने व्यय से रखते थे रणतरी 2000 थी। 8000 रथ जो 4 घोड़ों से जुते रहते थे जिस पर 1 रथी और 2 योद्धा रहते थे। 400000 पैदल, 80 चर्मधारी, धनुर्धारी, 30000 अश्वरोही, 90000 रणकुंजर जिन पर महावत लेकर 4 योद्धा रहते थे और युद्ध के भारवाही अश्व के सेवक तथा अन्य सामग्री ढोने वालों को मिलाकर 600000 मनुष्यों की भीड़ भाड़ उस सेना में थी और उस सेना विभाग के प्रत्येक 6 विभागों में 5 सदस्य रहते थे। प्रथम विभाग नौसेना का था, दूसरा विभाग युद्ध संबंधी भोजन वस्त्र कपड़े बाजा सेवक और जानवरों के चारे का प्रबंध करता था, तीसरे वर्ग के अधीन पैदल सैनिक रहते थे। चौथा विभाग अश्वारोहियों का था, पांचवा युद्ध रथ की देखभाल करता था, छठा युद्ध के हाथियों का प्रबंध करता था। इस प्रकार सुरक्षित सेना और अत्युत्तम प्रबंध से चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष तक भारत भूमि का शासन किया। भारतवर्ष के इतिहास में मौर्य युग का एक स्मरणीय समय छोड़कर 297 ईसा पूर्व में मानव लीला संवरण करके चंद्रगुप्त ने अपने सुयोग्य पुत्र के हाथ में राज सिंहासन दिया। सम्राट चंद्रगुप्त दृढ़ शासक, विनित व्यवहार, चतुर मेधावी, उदार नैतिक, सद्गुण संपन्न तथा भारत भूमि के सपूतों में से एक रत्न था। बौद्ध ग्रंथ अर्थकथा और वायु पुराण से चंद्रगुप्त का शासन 24 वर्षों का ज्ञात होता है जो 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक ठीक प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त के समय का भारतवर्ष। भारत भूमि अतीत उर्वरा थी, कृत्रिम जल स्रोत जो कि राजकीय प्रबंध से बने थे खेती के लिए बहुत लाभदायक थे। प्रकृति बड़ी बड़ी नदियां अपने तट से भूभाग को सदैव उर्वर बनाती थी। एक वर्ष में 2 बार अन्न काटे जाते थे। यदि किसी कारण से एक फसल ठीक न हुई तो दूसरी अवश्य इतनी होती थी कि भारतवर्ष को अकाल का सामना नहीं करना पड़ता था। कृषक लोग बहुत शांति प्रिय होते थे। युद्ध आदि के समय में भी कृषक लोग आनंद से हल चलाते थे। उत्पन्न हुए अनाज का 1/4 एक चौथाई राजकोष में जाता था। खेती की उन्नति की ओर राजा का भी विशेष ध्यान रहता था। कृषक लोग आनंद में अपना जीवन व्यतीत करते थे। दलदलों में अथवा नदियों के तटस्थ भूभाग में फल फूल भी बहुतायात से उगते थे और सुस्वादु तथा गुणदायक होते थे। जानवर भी यहाँ अनेक प्रकार के यूनानियों ने देखे थे। वे कहते हैं कि चौपाए जहाँ जितने सुंदर यहाँ जितने सुंदर और बलिष्ठ होते हैं वैसे अन्यत्र नहीं। यहाँ के सुंदर बैलों को सिकंदर ने यूनान भी भेजा था। जानवरों में जंगली और पालतू सब प्रकार के यहाँ मिलते थे। पक्षी भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में बहुत प्रकार के थे, जो अपने घोंसलों में बैठकर भारत के सुस्वादु फल खाकर कमणीय कंठ से उसकी जय मानते थे। धातु भी प्रायः सब उत्पन्न होते थे। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जस्ता इत्यादि यहाँ की खानों से निकलते और उससे अनेक प्रकार से उपयोगी अस्त्र शस्त्र साज आभूषण इत्यादि प्रस्तुत होते थे। शिल्प यहाँ बहुत उन्नत अवस्था में था, क्योंकि उसके व्यापारी व्यवसायी सब प्रकार के कर से मुक्त होते थे। यही नहीं, उसको राजा से सहायता भी मिलती थी, जिससे वे स्वच्छंद होकर अपना कार्य करें। शिल्पकार राज्य कर से मुक्त, क्या विडंबना है कि उसी भारत के शिल्प की जहां के बनाए आडंबर तथा शिल्प की वस्तुओं को देखकर यूनानियों ने कहा था कि भारत की राजधानी पाटलिपुत्र को देखकर फारस की राजधानी कुछ भी नहीं प्रतीत होती। शिल्पकार राज्य कर से मुक्त होने के कारण राजा और प्रजा दोनों के हितकारी यंत्र बनाता था, जिससे कार्यों में सुगमता होती थी। पिल्नी कहता है कि भारतवर्ष में मनुष्य 5 वर्ग के हैं। एक, जो लोग राज्यसभा में कार्यरत हैं, दूसरे सिपाही, तीसरे व्यापारी, चौथे कृषक और एक पांचवा वर्ग भी है जो दार्शनिक कहलाता है। पहले वर्ग के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, जो नीतिज्ञ होकर राज्यसभा में धर्माधिकार का कार्य करते थे, और सिपाही लोग अवश्य ही क्षत्रिय थे। व्यापारियों का वणिक संप्रदाय था। कृषक लोग शूद्र अथवा दास थे, पर वह दासत्व सुसभ्य लोगों की गुलामी नहीं थी। पांचवा वर्ग उन ब्राह्मणों का था जो संसार से एक प्रकार से अलग होकर ईश्वर आराधना में अपना दिन बिताने तथा सदुपदेश देकर संसारी लोगों को आनंदित करते थे। वे स्वयं यज्ञ करते और दूसरों का यज्ञ कराते थे। संभवतः वे ही मनुष्यों का भविष्य करते थे कहते थे, और यदि उनका भविष्य कहना सत्य न होता तो वे फिर उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाते थे। भारतवासियों की का व्यवहार बहुत सरल था। यज्ञ को छोड़कर वे मदिरा और कभी नहीं पीते थे। लोगों का व्यय इतना परिमित था कि वे शुद्ध पर ऋण कभी नहीं लेते थे। भोजन वे लोग नियत समय में तथा अकेले ही करते थे। व्यवहार के वे लोग बहुत अच्छे सच्चे होते थे। झूठ से उन लोगों को घृणा थी। बारीक मलमल के कामदार कपड़े पहनकर वे चलते थे। उन्हें सौंदर्य का इतना ध्यान रहता था कि नौकर उन्हें छाता लगाकर चलता था। आपस में मुकदमे बहुत कम होते थे। विवाह एक जोड़ी बैल देकर होता था और विशेष उत्सव में आडंबर से कार्य करते थे। तात्पर्य यह है कि महाराज चक्रवर्ती चंद्रगुप्त के शासन में प्रजा शांतिपूर्वक निवास करती थी और सब लोग आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। शिल्प वाणिज्य भी अच्छी उन्नति थी। राजा और प्रजा में विशेष सद्भाव था। राजा अपनी प्रजा के हित साधन में सदैव तत्पर रहता था। प्रजा भी अपनी भक्ति से राजा को संतुष्ट रखती थी। चक्रवर्ती चंद्रगुप्त का शासनकाल भारत का स्वर्ण युग था। इनके बहुत से नाम मिलते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, वात्सायन, द्रमिण इत्यादि इनके नाम प्रसिद्ध हैं। भारतीय पर्यटक इन्हें दक्षिण देशीय कोंकणस्थ ब्राह्मण लिखते हैं, और इनके प्रमाण में भी लिखते हैं कि दक्षिण देशीय ब्राह्मण प्रायः कूटनीति पटु होते हैं। चाणक्य की कथाओं में मिलता है कि वह श्याम वर्ण के पुरुष तथा कुपुरुष थे, क्योंकि इसी कारण से वह नंद की सभा से श्राद्ध के समय उठाए गए। जैनियों के मत से चाणक्य गोल ग्रामवासी और जैन धर्मावलंबी थे। वह नंद द्वारा अपमानित होने पर नंद वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा करके बाहर निकल पड़े और चंद्रगुप्त से मिलकर उसे कौशल से नंद राज्य का स्वामी बना दिया। बौद्ध लोग उन्हें तक्षशिला निवासी ब्राह्मण बताते हैं और कहते हैं कि धन धनानंद को मारकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राज्य दिया। पुराणों में मिलता है कौटिल्यो नाम ब्राह्मण समुद्रीष्यति। अस्तु सबकी कथाओं का अनुमान करके से जाना जाता है कि चाणक्य ही चंद्रगुप्त की उन्नति के मूल थे। चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक मंत्री ही चाणक्य था, पर यह ठीक नहीं ज्ञात होता कि वह कहाँ का रहने वाला था। जैनियों के इतिहास से बौद्धों का इतिहास को लोग प्रमाणिक मानते हैं। हेमचंद्र ने जिस भाव से चाणक्य का चित्र अंकित किया है वह प्रायः अस्वाभाविक घटनाओं से पूर्ण है। जैन ग्रंथों और प्रबंधों में प्रायः सभी को जैन धर्म में किसी न किसी प्रकार आश्रय लेते हुए दिखाया गया है। यही बात चंद्रगुप्त के संबंध में भी है। श्रवण बेलगोला लेख के द्वारा जो किसी जैन मुनि का है, चंद्रगुप्त के राज्य छोड़कर यति धर्म ग्रहण करने का प्रमाण दिया जाता है। अनेक ग्रंथों में तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि उसका साथी चाणक्य भी जैन था। अर्थशास्त्र के मंगलाचरण का प्रमाण देकर यह कहा जाता है कि ऐसा मंगलाचरण आचार्यों के प्रति कृतज्ञता सूचक वैदिक हिंदुओं का नहीं हो सकता, क्योंकि वे प्रायः ईश्वर को नमस्कार करते हैं। किंतु कामसूत्र के मंगलाचरण के संबंध में क्या होगा, जिसका मंगलाचरण है नमो धर्मार्थ कमे भयो। इनमें भी तो ईश्वर की वंदना नहीं की गई है, तो क्या वात्सायन भी जैन थे? इसलिए यह बातें व्यर्थ हैं। जैनों के अतिरिक्त जिन लोगों का चरित्र उन लोगों ने लिखा है जो अद्भुत कुत्सित और अप्रासंगिक बना डाला है, स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ भारतीय चरित्रों को जैन ढांचों में ढालने का जैन संस्कृत साहित्य द्वारा असफल प्रयत्न किया गया है। यहाँ तक उन लोगों ने लिख डाला है कि चंद्रगुप्त को भूख लगी तो चाणक्य ने एक ब्राह्मण के पेट से गुलगुले निकालकर खिलाए। ऐसी अनेक आश्चर्यजनक कपोल कल्पनाओं के आधार पर चंद्रगुप्त और चाणक्य को जैन बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए बौद्धों के विवरण की ओर ही ध्यान आकर्षित होता है। बौद्ध लोग कहते हैं कि चाणक्य तक्षशिला निवासी थे, और इधर हम देखते हैं कि तक्षशिला में उस समय विद्यालय था जहाँ की पाणिनि जीवक आदि पढ़ चुके थे। अस्तु संभवतः चाणक्य जैसा कि बौद्ध लोग कहते हैं तक्षशिला में रहते या पढ़ते थे। जब हम चंद्रगुप्त की सहायक सेना की ओर ध्यान देते हैं तो यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि चाणक्य का तक्षशिला में अवश्य संबंध था, क्योंकि चाणक्य अवश्य उनसे परिचित थे, नहीं तो वे लोग चंद्रगुप्त को क्या जानते। हमारा यही अनुमान है कि चाणक्य मगध के ब्राह्मण थे, क्योंकि मगध में नंद की सभा में वे अपमानित हुए थे। उनकी जन्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र इस समय प्रधान नगरी थी। चाणक्य तक्षशिला में विद्याध्ययन करके वहाँ से लौट आए, किसी कारणवश वह राजा से पर कुपित हो गए, जिससे के बारे में प्रायः सब विवरण मिलते जुलते हैं। वह ब्राह्मण भी प्रतिज्ञा कर उठा कि आज से जब तक नंदवंश का नाश कर लूँगा सिंह शिखा नहीं बांधूंगा। और फिर चंद्रगुप्त को मिलाकर जो जो कार्य उन्होंने किए वह पाठकों को ज्ञात ही है। जहाँ तक ज्ञात होता है कि चाणक्य वेद धर्मावलंबी कूटनीतिज्ञ प्रखर प्रतिभावान और हठी थे। उनकी नीति अनोखी होती थी और उसमें अलौकिक क्षमता थी। नीति शास्त्र के आचार्यों में उनकी गणना है। उनके बनाए नीचे लिखे हुए ग्रंथ बतलाए जाते हैं चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, कामसूत्र और न्याय भाष्य। यह अवश्य कहना होगा कि मनुष्य बड़ा प्रतिभाशाली था, जिसके बुद्धिबल द्वारा प्रसंगित राज्य कार्य कर्म से चंद्रगुप्त ने भारत का साम्राज्य स्थापित करके उस पर राज्य किया। हेमचंद्र के अविधान में पक्षिल, स्वामी और चाणक्य एक ही व्यक्ति का नाम है। चाणक्य का नाम ही वात्सायन था। चंद्रगुप्त की राज्यसभा में उसका रहना प्रमाणित है। अर्थशास्त्र में स्वयं चाणक्य ने लिखा है येन शास्त्रं च शास्त्रं च नंद राजा गता च भूव अश्मशयो दद्घ्रीतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्। जय शंकर प्रसाद। यहाँ पर जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त के अंतर्गत मौर्य वंश की कथावली समाप्त होती है, और आगे की जो कथावली है वह एक नाटक नुमा है।